ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब तो बहुत सी बातें हम जान चुके हैं अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, इस पूरे काल चक्र के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हमारे दर्शकगण हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो पहली बार कई बार हमसे मुलाकात करते हैं, या अभी भी सवाल ऐसे होते हैं जो कई बार कुलबुलाकर सामने आ जाते हैं कि क्यों अध्यात्म क्यों चाहिए, क्या होगा इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में अगर मैं जी रहा हूं तो फिर ऐसे में अध्यात्म के लिए वक्त क्यों निकालूं, किस तरह का परिवर्तन मेरे जीवन में होगा। तो आइए आज इसी तरह के कुछ सवालों को लेकर, हमें बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य, हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी का, जो कि पिछले लगभग 34 सालों से इस पूरे फिलॉसफी के साथ है और एक तरह से अपने जीवन में उन्होंने उसे कैसे उतारा और आम लोगों तक कैसे पहुंचाया, क्योंकि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिनसे हम और आप सब वाकिफ हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी उषा बहन, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। उषा बहन, आपका अपना अनुभव अगर हम देखते हैं तो पिछले 34 सालों का है, और जिस तरह से अध्यात्म की आज बात होती है, कई बार ये समझ में आता है कि हाँ, हमने अपनी पहचान भी की है, जैसा हम कह रहे हैं कि सब कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन मुझे क्यों, मेरे पास वक्त कहाँ है, मैं इतना बिजी हूं, या मेरे पास मतलब घर खाने के लिए वक्त तो होता नहीं है, चीजों के लिए वक्त नहीं है, सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि एक एक पल मेरा जो है वो फिक्स्ड है और मेरे मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो व्हाई स्पिरिचुअलिटी, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी।
ऐसा है कि इतनी भागती दौड़ती जिंदगी जो है उसी के लिए ही तो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी इनर एफिशिएंसी को हम बाहर ले आ सकेंगे और कम समय में हम अधिक कार्य कर सकते हैं। आज भागती दौड़ती जिंदगी में जब एफिशिएंसी व्यक्ति की कम हो जाती है तो उसको चिड़चिड़ापन भी आता है, गुस्सा भी आता है, टेंशन भी हो जाता है, उसमें कई नुकसान भी होते हैं और उसमें कितना टाइम हमारा चला जाता है। तो इसीलिए यही जीवन के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है। मुझे याद आता है महाभारत की वो बात कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते थे, लेकिन महाभारत का समय जब आया तो इतना नर्वस हो गया, इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसका हाथ पैर कांपने लगे। अब उस समय क्या कहेंगे, क्या उसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था, या उसको भगवान के साथ पर संदेह होने लगा, जब भगवान उसके साथ है, जब उसके पास इतनी अथाह क्षमता है, फिर ऐसी नर्वसनेस
मन बस में नहीं रह गया ना कहीं ये लगने लगे। ऐसा बहुत बार होता है, हम भी अगर बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते जा रहे हैं, हमें है क्षमता, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हमारे अपनों के साथ ही कुछ हो रहा होता है, जैसे उनके साथ भी, अर्जुन के साथ भी अगर हम देखते हैं तो उनके लिए इतनी बड़ी परिस्थिति ये थी कि अपनों के साथ ही युद्ध करना है, ये मन कहीं।
मेन बात यही है कि जीवन भी एक संघर्ष है, कि हर वक्त इंसान को युद्ध करना पड़ता है, जीने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है, और जीवन में कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि जहां व्यक्ति इतना नर्वस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, कई बार कई कार्य किए हैं, उसने सफल हुआ है, उसको अपनी शक्ति पर भरोसा है, भगवान में आस्था भी है, लेकिन फिर भी एक ऐसी नर्वसनेस, एक ऐसा टेंशन, ऐसा डिप्रेशन, ऐसी एक स्टेग्नेंसी उस समय जीवन में आ जाती है कि उस समय से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नजर ही नहीं आता।
दैट इज द टाइम व्हेन वी से आई कैन नॉट डू इट, हमसे नहीं हो सकता,
अभी हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा और नहीं कर सकते। तो उसी के लिए है आध्यात्मिकता, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही है अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति। इट्स लाइक एक पुश दे देना फिर से, और व्यक्ति उस स्टैग्नेंसी से फिर वापस बाहर आ जाए,
जीवन का संचार जो होता है, शक्ति का संचार।
हाँ। अध्ययन किस बात का, तो सदियों से ये तो सुनते आए हैं, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ, लेकिन क्या जानना है, क्या रियलाइज करना है। हर एक ये जानता है कि भाई शरीर के अंदर एक चेतन शक्ति आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, और क्या जानना है, लेकिन आत्मा की वास्तविकता, उसकी रियल पोटेंशियल क्या है, उसको समझने की जरूरत है। तो जैसे शरीर के, शरीर और आत्मा ये दो चीज है, ये तो सभी ने समझ लिया। शरीर माना क्या, शरीर माना पांच तत्व, इसलिए शरीर को जीने के लिए वही पांच तत्व चाहिए। शरीर डिमांड करता है, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए। जब इंसान पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है, अपने आप ग्लास छोड़ देता, ही फील्स कंफर्टेबल पानी पीने के बाद। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है उसकी वास्तविकता क्या है, और उस समय मुझे कौन सी वो शक्ति का संचार करना है जिससे हमारी उस स्टैग्नेंसी से हम बाहर आए और हम अधिक कार्य कर सके, उस मोड़ से, वो नर्वसनेस से हम गुजर करके निकल आए वापस। तो आत्मा को भी ये जीवन को चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए सात गुणों की आवश्यकता है जो आत्मा की वास्तविकता है। और ये सात गुण कौन से हैं? तो आत्मा की पहली आवश्यकता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आज विज्ञान की कोई कमी नहीं है, विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया है, लेकिन जितना ही विज्ञान चरम सीमा पर पहुंचा है उतना ही मनुष्य जीवन के अंदर अहंकार का अज्ञान बढ़ता जा रहा है। इसलिए छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसको सुलझाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग, जो आपसी संबंधों में भी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, जो ईगो है उसको न्यूट्रलाइज करता है आध्यात्मिक ज्ञान। जब ईगो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये अज्ञानता के कारण ही कमजोरियां व्यक्ति के जीवन में आ गई है, और ये कमजोरी के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कितना परेशान है। यही चीज हो गया था अर्जुन के जीवन में भी, कमजोरियां आ गई थी। तो इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम उसको आत्मा का ही ज्ञान दिया, रियलाइजेशन। अब जब रियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सात गुण जो है, जिसके लिए आत्मा को कहा आत्मा सतोगुणी है। ओरिजिनली हर आत्मा सात्विक है, हर आत्मा सतोगुणी है, उसी को वो ढूंढ रहा है बाहर की दुनिया।
बिल्कुल, जैसे पानी की प्यास आपने कहा, बहुत सही बात है कि जहाँ, क्योंकि वो जहाँ कमी हुई, क्योंकि वही वो ढूंढ रहा है पानी, शरीर पानी उतना ही ढूंढ रहा है जितनी उसकी कमी हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया है। उसी तरह से ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हम बात कर रहे हैं जिन गुणों की आत्मा की, वो हमारे अनुभव हैं अपने, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तभी हम उन्हें तलाश रहे हैं।
तो इसीलिए आध्यात्मिकता चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है? इट्स अ जर्नी बैक टू द रियल सेल्फ। जो कमजोरियों के तरफ हम चले गए, वापस उस जगह पर आना, ये है यात्रा। और ये आना, ये यात्रा जो है, उसी का नाम तो रियलाइजेशन है, कि क्यों नहीं हम उस रियलाइजेशन में बैठे, उसको अनुभव करें। लेकिन उसको अनुभव करने के लिए जितना हम बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए दुनिया में कहा हुआ है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है।
क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि हमारी प्यास इतनी बढ़ गई कि हम ढूंढते ही रहे। प्यार की भी बात करते हैं अगर, या खुशी की, शांति की बात करते हैं, तो हमारी अपनी ही डिप्लीशन इतनी ज्यादा हो गई, हम अपने आप को इतना खुद ही डिप्लीटेड महसूस कर रहे हैं कि हम फिर इसीलिए मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं।
तो व्यक्ति बाहर, ये व्यक्ति द्वारा मुझे मिले, ये वस्तु द्वारा मुझे मिले, भौतिकता द्वारा मिले, माना उसी से प्राप्त करने की चाहना लेकर के बैठने लगे, हर कर्म करने लगे। लेकिन जब हम हर कर्म में इसको जितना शेयर करते जाएंगे, बांटते जाएंगे, तो अपने आप अंदर में बढ़ता जाएगा और वो हमारा जीवन हो जाएगा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि मैं शांति में खाली बैठ जाऊं। शांति में इंसान बैठेगा भी ना तो मन डबल फोर्स से चलता रहेगा, वो शांति का अनुभव नहीं करेगा। मेडिटेशन मीन्स इट्स अ वे ऑफ लाइफ, कि जहां हम शांति से हर कर्म करें, जहां हम खुशी से हर कर्म करें, जहां हम समझ के साथ ज्ञान युक्त होकर के हर कर्म करें, प्रेम से कर्म करें, तो ये सात गुणों के आधार पर जब हम कर्म करने लगेंगे तो उसका अनुभव हमको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन आज हमारी ये भागती जिंदगी में वो चीज कहाँ छूट गई और इतना टेंशन में कर रहे हैं, कर्म कर रहे तो भी टेंशन में, इसलिए उसका रिजल्ट क्या होगा? टेंशन ही मिलेगा, क्योंकि टेंशन में किया गया कर्म वो हमें सुख का अनुभव नहीं दे रही है, शांति का अनुभव नहीं करा रही है, तो वो हमें और स्ट्रेस का अनुभव करा रही
है। वो एक मशीनीकरण सा होता जा रहा है कि हमारी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो पाती है उसमें पूरी तरह से।
और इसलिए जितना दूसरों के साथ बातचीत में आओ, व्यवहार में आओ, उसमें भी स्ट्रेस, हर बात में स्ट्रेस आने लगा। फिर उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए चिड़चिड़ापन, उस चिड़चिड़ापन के कारण हमारी सारी साइकिल ही रॉन्ग जा रही है, उल्टी घूम रही है। जब उल्टी घूम रही है तो उसमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव बनना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव हम बनते जाएंगे, जितना ये सात गुणों को अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, तो हर चीज से हमें उसका एक्सपीरियंस मिलेगा।
उन सात गुणों को हम एक बार फिर ले लेते हैं कि जो जो हम, क्योंकि अपने जब भी हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं, आगे हम योग की ध्यान की भी बात करेंगे कि जब हम अपने साथ हों तो उन सात गुणों को कम से कम हम पता तो हो हमें, कहीं ना कहीं हम पांच तत्वों की बात तो बार बार कर लेते हैं और उनसे हम वाकिफ हैं, लेकिन जिन सात गुणों की से परिपूर्ण है हमारी हम जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, उसी से हम जो है अभी तक वाकिफ नहीं
हुए। तो सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान माना अपने ही विषय में समझ, परमात्मा की समझ। ज्ञान के साथ साथ चाहिए पवित्रता, शुद्धि। व्यक्ति जहाँ शुद्ध वातावरण है वहाँ कंफर्टेबल फील करता है। जहाँ मन के अंदर कहीं भी कोई मैनिपुलेट करना शुरू करते वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं। जितनी पवित्र भावनाएं हैं, पवित्र विचार है, पवित्र व्यवहार है, वहाँ कंफर्टेबल फील करते, अच्छा लगता है, तो वो मेरी वास्तविकता है। जहाँ ये दोनों है, ज्ञान मन अंडरस्टैंडिंग और पवित्रता शुद्धि है, वहाँ प्रेम है। अंडरस्टैंडिंग ना हो, शुद्ध भावनाएं ना हो, तो प्रेम कहाँ से आएगा?
वो स्वार्थ होता जाएगा।
स्वार्थ होता जाता है। और जहाँ ये तीनों है वही शांति है। माना स्वार्थ ही ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो, पवित्र भावनाएं हैं, तो किसी को किसी से भय ही नहीं, तो माइंड रिलैक्स है। और जहां पर प्रेम है, आज लोगों को प्रेम चाहिए, लेकिन कोई प्रेम से बात करता है ना तो भी टेंशन होने लगा कि प्रेम से क्यों बोल रहा है, आज ये बड़े प्रेम से बात कर रहा है। माना चाहता है प्रेम, लेकिन प्रेम से बात करता है कोई तो टेंशन होता है, रिलैक्स नहीं है, क्योंकि मालूम है कि इसके मन के अंदर शुद्ध भावनाएं नहीं है, जरूर कोई स्वार्थ समाया है। जहां ये तीन है वहां रिलैक्स्ड है, शांति है, और जहां ये चारों है वही आत्मिक सुख का अनुभव करता है। जहां ये पांचों है वही आनंद है, इसलिए उसको कहा जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। और जहां ये छह है वहां आत्मशक्ति है, विल पावर है। नर्वसनेस क्यों आती है? विल पावर की कमी, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो नर्वसनेस आई, डिप्रेशन आया। विल पावर क्यों खत्म होते? क्योंकि ये छह जो है ये शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ लव, ये सब शक्ति है। तब आत्मशक्ति आएगी। अगर ये शक्ति ही ना हो तो आत्मशक्ति कहाँ से?
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं ज्ञान और पवित्रता के साथ जो है वो प्यार का संचार होता है, और फिर प्यार से हम शांति का अनुभव करते हैं, और यही सुख आनंद से होते हुए। और जब आत्मशक्ति का एहसास भी हमें तभी होता है जब हम आनंद में होते हैं। अदरवाइज अगर हम दुख में हो, परेशानी में हो, या कई बार अगर हम युद्ध की जैसे बात करते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी को ऐसे जीना ही है, युद्ध करते जाना है, कि ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, लेकिन अंदर से वो आनंद में नहीं है।
नहीं है, इसलिए तो आजकल मैनेजमेंट में भी मोटिवेशन, मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर है तो वो कितना भी कार्य कर ले, उसके अंदर एक विल पावर आता है करने के लिए, लेकिन अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं है, आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है उसके अंदर, तो उसके पास करने की शक्ति भी नहीं है, है ना? तो इसीलिए आनंद हमारी स्पिरिट्स को जगा देता है, हमारी वो मोटिवेशन अंदर की वो जागृत हो जाती है और तब हम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, शक्ति आ जाती है, असंभव कार्य संभव हो जाता है।
या डेफिनेटली मुझे मैंने यहाँ एक बहुत डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है, और यहीं तब मुझे समझ में एक बात ये भी आ रही है, शायद आप बताइए क्लियर ज्यादा, कि तभी हम जब बिना आनंद में रह के काम कर रहे होते हैं, चाहे मोटिवेटेड है चाहे हम पूरी एनर्जी से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि भैया यही हमने कर्म करते जाना है। कई लोग कर्म की फिलॉसफी की बात करते हैं कि कर्म करते जाना है, हमें नहीं सोचना कुछ भी कि मैं खुश हूं या नहीं हूं, कर्म करना है, लेकिन वो फिर थकते बहुत जल्दी,
बहुत जल्दी थक जाते हैं और इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं जैसे कि अंदर ताकत है ही नहीं, वो विल पावर ही खत्म हो गई, और इसीलिए फिर नर्वस, किसी ने कुछ कह दिया तो, ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा बोल दिया तो, माना खुद में भी विश्वास नहीं रहा कि किसी ने अगर कह दिया तो मेरा क्या होगा, है ना। लेकिन जहां ये सातों गुण है वहां व्यक्ति कितना भी कर लेता है उसको कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। और ये सात गुणों को अगर विकसित करते जाए हम, तो इसीलिए मेडिटेशन में क्या करते हैं, इसको हम विकसित करते हैं। और जितना एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे जैसे हम इन गुणों का चिंतन करते हैं उसका एनर्जी हम जनरेट करते हैं, और वो एनर्जी को ही कहा ओरा, उसी का नाम तो ओरा है। ये सात गुणों का सात कलर्स है, और वो सात कलर्स व्यक्ति के आसपास ओरा के रूप में है।
तो ये जो एनर्जी जो यहाँ हम सोल की बात करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है,
हाँ।
उससे डिसिपेट होती हुई ये बाहर ऊर्जा।
तो जितना एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे जैसे आप सोचेंगे, आज व्यक्ति को डर क्यों लगता है, जब उसके विचार वैसे हैं, डर के संबंधित विचार है, तो उसको डर लगने लगता है, और डर लगता है तो वो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रहा है। ये सात गुणों से हम पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमें एक शील्ड की तरह हमें सेफ रखती है, नेगेटिव एनर्जी से बचाती है।
तो आज एक और बात की भी बहुत चर्चा होती है, जब हम ऑरा की बात करते हैं, एनर्जी जो आसपास है उसकी बात करती है, कि ऑरा टकराते हैं और ऑरास ही ये बात एहसास दिलाते हैं कि हमारा उनके साथ इंट्रैक्शन सामने वाले के साथ कैसा रहेगा, या वो एहसास दिला सकते हैं। तो अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो ये जो आज की बातचीत हम कर रहे हैं उसमें भी ये बात सही लगती है।
बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, मुझे मेरे अंदर ही एक डाउट है, पता नहीं ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो नेचुरली मेरा जो वाइब्रेशंस है उसको स्पर्श होता है, उसको टच होता है, और वो फिर मेरे लिए वैसा ही विचार जनरेट करने लगता है कि जरूर ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मेरे ही अपनी थिंकिंग है। उससे वो एनर्जी मिल जाती है, नेगेटिव नेगेटिव जब मिल जाती है तो फिर नुकसान करती है। लेकिन जब हम एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, ये पॉजिटिव गुणों के आधार पर जो मेरी वास्तविकता है, और उसी को जनरेट करते हैं, तो वो ओरा बन जाता है। और इसीलिए ये सात कलर के को मिला दो तो व्हाइट हो जाता है, इसलिए देवी देवताओं के आसपास एक व्हाइट ओरा दिखाता है, माना वो एनर्जी हम भी जनरेट कर सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि यही ये हमारे अपने ही अंदर है, लेकिन बात सवाल फिर एक वही आता है कि ये समझते हुए, ये जो ज्ञान हमने लिया, या ये जो सद्गुणी आत्मा की बात है कि इन सारे सातों गुणों को, सातों पावर्स को हम अगर एहसास करें, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशनल काम है, मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो इन सातों गुणों को एहसास के साथ मैं काम कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं कंटिन्यूसली याद रखूँ उनको, कैसे मैं कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करते हुए ये जो सात गुणों की जो बात आपने कही है वो, और एंड हाउ विल इट डिक्रीज माई एफिशिएंसी।
ऐसा है कि आज एक डॉक्टर है, जब घर में है ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में, गार्डनिंग भी करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह उठता है, वो तैयार होता है हॉस्पिटल जाने के लिए, उसको रटना नहीं पड़ता है मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं। लेकिन जैसे ही तैयार हुआ, इज गेटिंग रेडी, कि उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, और ये कॉन्शियसनेस जैसे शिफ्ट हुई तो उसको कौन याद आएगा, हॉस्पिटल, पेशेंट्स, दवाई, ऑपरेशंस, ट्रीटमेंट्स, यही याद आएगी। उस समय उसकी माँ सपोजिंग उसको कहती है, बेटा आते समय ये लेके आना, हाँ हाँ करेगा, लेकिन उस समय वो कॉन्शियसनेस नहीं है, बेटे की कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो बात अंदर जाती नहीं है। और इसलिए हॉस्पिटल से वापस जब शाम को आता है, माँ पूछती बेटा तुम ये लेके आए,
तो
भूल गया, भूल नहीं गया, एक्चुअली वो बात अंदर गई ही नहीं, क्योंकि उस समय उसकी कॉन्शियसनेस घर की थी ही नहीं, इसीलिए वो चीज अंदर गई नहीं। तो इसी तरह मुझे रटने की जरूरत नहीं है कि मैं शांत स्वरूप हूँ या मैं प्रेम स्वरूप हूँ मैं या पवित्र स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर उस कॉन्शियसनेस में आते ही वही ट्रीटमेंट, उसका बोलना चलना, उस समय उसका असिस्टेंट भी आता है तो कैसे बोलता है, उस कॉन्शियसनेस में स्थित होकर के बोलता है ना, उस समय फालतू बातें नहीं करेगा वो अपने असिस्टेंट के साथ, नर्सिस के साथ कोई फालतू बातें नहीं, टू द पॉइंट, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में है। इसी तरह जब हम सोल कॉन्शियसनेस बनेंगे तो हम भी ये सात गुणों से संबंधित ही बातें करेंगे, वही हमारा व्यवहार होगा, हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन इतना नेचुरल हो जाएगा कि वही हमारा व्यवहार, वही हमारा कर्म और उसी से संबंधित सारी बातें चलेगी।
तो हमारा एक्चुअली हर प्रोफेशन में वही रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा,
वही रिफ्लेक्ट, और लोग भी यही चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है। आज कोई प्रेम से बात करता है तो कितना अच्छा लगता है, कोई बुजुर्ग है उसके साथ उसने जीवन में बहुत प्यार पाया है, चलो छोड़ दो उसके साथ प्यार नहीं, प्यार से बात नहीं करेंगे तो चले, नहीं उसको भी चाहिए, कोई प्यार से बात करता है उसको अच्छा लगता है ना, तो हर एक को ये अच्छा भी लगता है, चाहिए भी, और वही जीवन है, जीवन का सार यही है, और यही आध्यात्मिकता से आएगा। तो आध्यात्मिकता क्यों चाहिए, क्योंकि वही हमारी जीवन है जो जीवन को नेचुरल बनाएगा।
तो यही मैं ये चाहना चाहती हूँ, जैसे आपने अर्जुन की बात की, जो सिचुएशंस की बात हम करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, और आपने कहा कि एकदम से हम सारी अपनी वो कैपेबिलिटीज भूल जाते हैं, हमारे पास हमें दिखता ही नहीं है कुछ, हम एकदम से हतोत्साहित जैसे हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो ऐसे में ये कॉन्शियसनेस
बहुत उपयोगी होंगी और उससे हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो नेचुरल स्टेट है उसमें हम रह करके कर रहे हैं तो हमें और जैसे एक बूस्टर लग जाता है और हमारा कार्य अच्छा होगा, और वो कार्य जब अच्छा होता है तो सबको अच्छा लगने लगता है।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात हमारे सामने ये आई कि जिस तरह से शरीर को जब हम नेचुरल स्टेट में रखते हैं, कहा जाता है कि जब आप प्रकृति के बीच में होते हैं तो शरीर जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, वही आत्मा की भी बात वही है कि जब उसके अपने ही गुणों के साथ उसको हम रख रहे होंगे, वो माहौल दे रहे होंगे। लेकिन उषा बहन बात ये आ जाती है कि माहौल बाहर का जो है, जिस माहौल में हम आज जी रहे हैं, वहां ये कॉन्शियसनेस तो कहीं भी नहीं है।
नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जागृति लोगों के अंदर आने लगेगी तो यही जागृति के साथ, और जब एक बार एक्सपीरियंस कर लेना कि इससे कितना कंफर्टेबल फील होता है, कितना इजी काम होता है, कितना टेंशन से फ्री रह सकते हैं, कितना कम समय में हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं, एक बार व्यक्ति को एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता है। जब इसको जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव कर लेगा ना, बस उसके बाद देखो चेंज आने लगता है।
बहुत सुंदर,
करना नहीं पड़ता है,
इट स्टार्ट्स हैपनिंग, अपने आप होने लग जाता है। तो इस पूरे एहसास के साथ, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों के सवाल ये थे कि मुझे नहीं चाहिए अध्यात्म, अच्छी बातें लग रही हैं, सब कुछ है, लेकिन इट्स नॉट फॉर मी, बट डेफिनेटली इट इज फॉर ईच वन ऑफ अस, हर एक को, क्योंकि हर आत्मा का स्वरूप वही है और हर आत्मा की भूख, हर आत्मा की प्यास भी वही है। तो आज आपने हमें एक बार फिर सतगुरु की बात की और किस तरह से हमारी अपनी ही एफिशिएंसी को, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें इस कॉन्शियसनेस को डालते ही इस कॉन्शियसनेस के साथ एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम ज्यादा अच्छा होता है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में है, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in और कॉल अस ऑन 09999559660।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज जिस तरह से हमने एक बार फिर अध्यात्म की अपने जीवन में आवश्यकता की बात की है कि किस तरह से ये कॉन्शियसनेस हमें हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है, आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे कि इस कॉन्शियसनेस को हमेशा अपने साथ रखें, बिना एफर्ट के ये हमारे साथ रहे और ये ध्यान से संभव है। किस तरह का ध्यान करें, कैसे ध्यान किया जाए और ध्यान करते वक्त जो जो मुश्किलें आती हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे की कड़ी में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।